नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली की सेवाओं के खरीद से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक महीने के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति के अध्यक्ष आवश्यकतानुसार अन्य कार्यालयों के अधिकारियों की सहायता ले सकती है। वहीं समिति को सचिवालय सहायता क्षमता निर्माण आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। सीबीएसई ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अब तक 16000 से अधिक छात्र मूल्यांकन के लिए आवेदन कर चुके हैं। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया के आधार पर प्लेटफॉर्म को और बेहतर बनाया गया है, साथ ही सत्र की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है ताकि प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक और सुगम हो सके। बोर्ड ने बताया कि पोर्टल की सेवा में व्यवधान डालने के प्रयास किए गए और 2 मिनट के अंदर लगभग 15 लाख आवेदन भेजे गए। बोर्ड ने बताया कि सिस्टम पर उपलब्ध फाइलों तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। सीबीएसई ने घोषणा की कि 12वीं की छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने का पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। भारत ने कहा है कि नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत नेपाल सीमा को लेकर टिप्पणी और उसके बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के बारे में पूछे गए सवाल के उत्तर में कही।
भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैंस लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
भारत ने जम्मू कश्मीर के बारे में पाकिस्तान यूरोपीय संघ के संयुक्त वक्तव्य में अवांछित संदर्भों को भी खारिज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स कल से 4 दिन के भारत दौरे पर रहेंगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि डेल्सी रोड्रिक्स के साथ कैबिनेट के प्रमुख मंत्री भी रहेंगे। श्री जायसवाल ने बताया कि वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिक्स अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पोकोसा माशातेले से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति के साथ दक्षिण अफ्रीका सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। दोनों नेताओं ने भारत दक्षिण अफ्रीका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर सार्थक वार्ता की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने और उनके साथ आए शिष्टमंडल से नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि बैठक में भारत नेपाल विकास साझेदारी और जनसंपर्क के मुद्दों पर चर्चा की गई। रूस ने कीव और यूक्रेन के अन्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिनमें 18 नागरिक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए। राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि देश में नागरिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाया गया। उन्होंने अमरीका से यूक्रेन के पैट्रियट मिसाइलें भेजने का आग्रह किया। विश्व मौसम संगठन WMO ने अलनीनो की स्थिति बनने की चेतावनी जारी की है, जिससे इस वर्ष दुनिया भर में मौसम के भीषण प्रकोप की आशंका है। इस वर्ष जून और अगस्त के बीच अलनीनो के प्रभाव की 80% संभावना है और ये नवंबर तक जारी रह सकता है। महिला क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज इंग्लैंड के टॉन्टन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 11 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।